नमस्कार दोस्तों, छिंदवाड़ा उगेन से आपका दोस्त योगेश। जलवायु की पुकार हमारा आज का विषय है। निरंतर देख सकते हैं जलवायु के परिवर्तन के कारण लोगों के जीवन पर भी खासा प्रभाव देखा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण चाहे बरसात समय पर आना हो, चाहे लोगों के स्वास्थ्य पर हो, लोगों के खान पान पर हो, चाहे ज्वालामुखी हो या फिर समुद्री जो भी लहरें उठती है उसको देखा जाए, साथ ही जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो या फिर जंगलों पे लगने वाली आग हो, इसके कारण जलवायु पर कितना प्रभाव पड़ रहा है और क्या आने वाले दिनों में मानव जीवन पर इसका किस तरीके से प्रभाव देखा जा सकता है। आज हमारे साथ गांधीवादी लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनूप सर जुड़े हुए हैं। अनूप सर, मोबाइल लाइन पर स्वागत सर आपका।
नमस्कार योगेश भाई।
सर, किस तरीके से देखते हैं जलवायु की पुकार, क्या बताना चाहेंगे कि लोगों के जीवन पर किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है सर?
जलवायु में जो परिवर्तन आज दिखाई दे रहा है, या पृथ्वी की जो गर्माहट हो रही है, या पर्यावरण संबंधी नाना प्रकार की जो समस्याएं हम लोगों के सामने आ रही है, और जिसका परिणाम हम सभी मानव से लेकर के जीव जंतु तक भुगत रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ दोषी अगर कोई है तो मनुष्य का लालची मन है या लालची मनुष्य है। मनुष्य अपने लालच को त्यागना नहीं चाह रहा है और अपने तृष्णा में फंस करके वह अंधाधुंध विकास कर रहा है, और इस प्रकार से विकास कर रहा है कि उसके विकास की कोई दिशा नहीं है। मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने को राजा बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए वह सारी नैतिकता को भूल गया है। और जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है, जो पर्यावरण की समस्या है, पहले इसके दो कारण होते थे, एक प्राकृतिक होता था और एक मानवीय कारण होता था, लेकिन आज आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो कारण है वो मानवीय कारक है, क्योंकि मनुष्य इस प्रकार से अंधा हो गया है, इस प्रकार से उसकी सोच समाप्त हो रही है। वो चाहता ही नहीं कि हमारी पृथ्वी बचे, हमारा प्रकृति बचे, वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ नहीं बचाना चाहता। आपको याद होगा कि गांधी जी ने इस समस्या को लेकर के एक बहुत बढ़िया कोटेस्ट किए थे कि हमारी पृथ्वी, हमारी प्रकृति सभी के इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है, परंतु लालच भरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकती है। तो आज जो मनुष्य है अपनी आवश्यकता को उबार दिया है, आवश्यकता को खूब बढ़ा दिया है, और उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वह प्रकृति को, पर्यावरण को नाना प्रकार से प्रभावित कर रहा है, और उसका परिणाम संपूर्ण जगत भुगत रहा है। केवल यह एक सीमा की समस्या नहीं है, जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण यह एक सीमा विहीन समस्या है जिससे पूरा विश्व गुजर रहा है, परंतु पूरे विश्व के लोग अपनी आदतों में आज भी सुधार करने के लिए तैयार नहीं हो रहे, या उसी का परिणाम है कि आज जलवायु खराब हो रही है।
जी सर, जनता द्वारा या फिर सरकार द्वारा और संगठनों द्वारा क्या प्रयास किए जाए कि जलवायु परिवर्तन को प्रतिकूल बनाने में किस तरीके से प्रयास करें, साथ ही वृक्षारोपण करने की पर बहुत बल दिया जा रहा है सरकार द्वारा,
जी
सर इसको कितना बेहतर अपना जलवायु को बेहतर करने में सहयोग होगा सर?
आप देखिए, ये तो मिला जुला सहयोग का ही नतीजा होगा कि पर्यावरण को हम सुधार सकते हैं, परंतु मैं थोड़ा सा इस पे बोलना ये चाह रहा हूँ कि आपने कहे कि संस्थाओं के द्वारा,
जी
आप योगेश भाई डाटा उठा करके देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में पर्यावरण बचाने के नाम पे हजारों संस्थाएं काम कर रही है। और पर्यावरण तो छोड़िए, मिट्टी बचाना, जल बचाना, पौधे बचाना, जंतु बचाने के नाम पर संस्थाएं बनी हुई है। इन संस्थाओं का कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिस प्रकार से अपने देश के प्रधानमंत्री जी हाथ में झाड़ू लेकर के फोटो खिंचवाते हैं, उसी प्रकार से यह संस्था के लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं और पेड़ लगाते हैं, पर्यावरण में जाकर के कुछ करते रहते हैं, बाकी जमीन पे काम नहीं करते हैं। इनका एक ही काम है कि सरकार से सेटिंग करो, पैसे लाओ, आधा खाओ और आधा खिलाओ, इनको पर्यावरण बचाने से कोई काम नहीं। हाँ, पर्यावरण बचेगी आम जनता के मुहिम से। अब आम जनता को स्वतः अपने जीवनचर्या में, अपने दिनचर्या में और अपने कर्म में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है। वह समझे कि हमारा मूल कर्तव्य है पर्यावरण को बचाना। भारत के संविधान में लिखा है मौलिक कर्तव्य, और उसमें सीधा सीधा है कि अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए। तो अगर भारत की जनता जग जा रही है तो हमें सरकार से आशा नहीं करना है, हमें स्वयंसेवी संस्थाओं से आशा नहीं करना है, क्योंकि स्वयंसेवी संस्थाओं के काम भी हम लोगों ने देखा है और सरकार के काम को हम देख रहे हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ बोलती है, इस पे कोई काम नहीं करती है। इसके लिए जरूरी है कि हम सभी आम मानव, आम मनुष्य मिलकर के पूरे भारत के नागरिक मिलकर के अपने अपने कर्मों में परिवर्तन लाए, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी आवश्यकता को सीमित करें, आवश्यकता को बाजार के हवाले न कर दे, क्योंकि बाजार भी कारपोरेट लोगों की है, और कारपोरेट लोग तो यह चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से जितना पर्यावरण नुकसान होगा उतना उनका व्यवसाय बढ़ेगा। आज देख लीजिए कि पानी हमारा इतना दूषित हो गया है कि आज हमको फिल्टर पानी पीना पड़ रहा है, और पानी की कीमतों को उठा करके देख लीजिए। इसी प्रकार से कुछ दिन में आने वाले हर संसाधन बिकने लगेंगे और हमारी आय कम हो रही, तो हम कहाँ से खरीद पाएंगे? इसलिए अनिवार्य है कि न हम बाजार पे भरोसा करें, न हम सरकार पे भरोसा करें, न हम संस्थाओं पे भरोसा करें, हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पे भरोसा करें और गांधी के रास्ते को अपना ले, हमारा पर्यावरण सुधर जाएगा।
जी सर, सर सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है जलवायु परिवर्तन को लेकर, उसको धरातल पर किस तरीके से देख रहे सर?
सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, तो पर्यावरण मंत्रालय को खुद ही अपने डाटा के बारे में कुछ पता नहीं रहता है, खुद नहीं बताते हैं कि क्या होना चाहिए। आप देख लीजिए कि इन्होंने एक पर्यावरण एक प्रोजेक्ट लाए थे गंगा सफाई अभियान का,
अच्छा
उस समय का डाटा था 45,000 करोड़ रुपया खर्चा करना है, और उमा भारती जिनकी मंत्री थी। योगेश भाई आप बताइए कि क्या गंगा साफ हो गई? आखिर बजट तो उनका बना। अभी दिल्ली में बाढ़ आया था, यमुना के दशा लोगों ने देखा कि यमुना का पानी कितना गंदा हो गया। तो भाई सरकार कारपोरेट के चंदे से चल रही है, और कारपोरेट इनको अरबों रुपया करोड़ों रुपया जब चंदा दे रहा है तो अपने प्रदूषण को क्यों रोकेगा? वही तो बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रहा है ना, और वही कंपनियों के कचरे सारे गंगा नदी में, यमुना नदी में, जितनी नदियां हैं उनमें डाला जा रहा है। एक तो कचरा नदी में डाल रहे, और दूसरा की जो धुआं निकल रहा है वो आसमान में छोड़ रहे, तो उनपे रोक नहीं लग रही। और पर्यावरण मंत्रालय जानता है, क्योंकि सर्टिफिकेट तो वही देता है ना कि आप काम करिए, धुआं उत्पादित करिए, इतना धुआं उत्पादित करिए, इतना कचरा निकालिए, तो कोई कंट्रोल नहीं कर रहे, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय, हमारी सरकार, हमारे संसद प्रतिनिधि और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, ये सभी कारपोरेट के लोग हैं, और कारपोरेट के चंदे से चलने वाले लोग हैं, तो कारपोरेट के पैसे से चलने वाली संसद कभी पर्यावरण को नहीं बचा सकती है।
जी सर, सर वैश्विक रूप से जो उठाए गए वैश्विक जो संगठन है
जी
जलवायु परिवर्तन को उठा रहे, जो आवाज है उनकी, जो योजनाएं है, उसको किस तरीके से देख रहे सर आप?
योगेश भाई आज वैश्विक संगठन में जो सबसे बड़ा संगठन है, और जिसका निर्माण भी पूरे विश्व के लोगों ने किया कि सारी विश्व की समस्याओं को हल किया जाएगा, वो एक संगठन है अपना सरकारी तरीके पे देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ। परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका अब किसी से छिपी नहीं हुई है कि जो 5 देश कहते हैं उसके अनुसार वो चलता है। आज उसका जनतांत्रिकरण समाप्त हो गया है, वह पूरी तरीके से अमेरिका चीन का पिछलग्गू बन गया है। हम लोग तो यहाँ तक मांग करते हैं कि सबसे पहले यूएनओ का जनतांत्रिकरण करो, पहला बात। दूसरा बात, जो जलवायु परिवर्तन को लेके है, तो ये पूरी समस्या यूएनओ को पता है, पूरी समस्या विश्व भर के संगठनों को पता है, और आप देखे होंगे कि COP के नाम से हमेशा एक इनका मीटिंग होती है हर साल, कभी पेरिस में होती है, कभी कोपेनहेगन में होती है, कभी पृथ्वी सम्मेलन हुआ इनका, सबसे जो बड़ा सम्मेलन हुआ क्वेटा सम्मेलन 1997 में, उसमें यह तय किया गया कि जो देश कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं वो कटौती करेंगे, और छोटे छोटे देशों को फंडिंग करेंगे ताकि अपने यहाँ ग्रीन टेक्नोलॉजी को डेवलप करें और टेक्नोलॉजी देंगे। परंतु उस संस्था में अमेरिका ने स्वीकार किया कि हम ये काम करेंगे कॉन्फ्रेंस में, और जैसे ही बाहर निकला उसने बोला कि हम इस बात को नहीं मानेंगे, हम अपने लोगों के उपभोग के स्तर को कम नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से जो सरकारी संगठनों का या सरकारी देशों का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है या जलसा हो रहा है, उसमें पर्यावरण पे चिंता नहीं हो रही है, जाते हैं बढ़िया खाना खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रहते हैं और वापस चले आते हैं। जिम्मेदारी है पूरे विश्व के स्वयंसेवी संगठनों की, जिम्मेदारी है विश्व में गांधी को मानने वालों की, जिम्मेदारी है विश्व में नेल्सन मंडेला को मानने वालों की, जिम्मेदारी है विश्व में मानवता को मानने वालों की, कि वह अपने कर्मों में सुधार करे और एक ऐसी सरकार को चुन करके दे जो सरकार पर्यावरण, जीव जंतु और मानव के बारे में सोचे। क्योंकि आज जो बदलाव होगा वो हिंसा के माध्यम से नहीं होगा, क्रांति के माध्यम से नहीं होगा, बल्कि वह बदलाव जनतंत्र में वोट के माध्यम से होगा। तो पूरे विश्व के लोगों को चाहिए कि एक ऐसी सत्ता बनाए जो देश के बारे में सोचे, पर्यावरण के बारे में सोचे। और इन समस्याओं को लेकर के डॉक्टर लोहिया ने बहुत अच्छी बात कही थी कि एक विश्व संसद बनाओ, और विश्व संसद बन जाएगी तो सारी समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होगी, किसी प्रकार का ऊंच नीच नहीं होगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। परंतु विश्व की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि विश्व भर की जो सरकारें चल रही है वो कॉरपोरेट की सरकारें चल रही है। इसलिए पूरे विश्व के नागरिकों को, हम भारत के नागरिकों को, और हम भारत के नागरिक तो पर्यावरण प्रेमी है, हमारे रग रग में पर्यावरण बचा है, तो हम लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए स्वतः आगे आए।
जी, तो ये थे डॉक्टर अनूप सर, जिन्होंने जलवायु की पुकार विषय पर मोबाइल वाणी पर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की। अनूप सर, मोबाइल वाणी को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी योगेश भाई, नमस्कार।
जी, छिंदवाड़ा वाले सब पदोस योगेश, धन्यवाद।